ज्ञानद्विरान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्यायः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे
हम लोग कथा में पधारे। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म के श्री चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं और तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरुओं विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के भी चरणों में बारंबार दंडवत प्रणति ज्ञापन कर रहा हूं। नंदगांव में नंद भवन में आइए और वहां नंद बाबा और उद्धव जी से रात भर बातें होती रहती। सवेरा हो गया, सूर्य पूरब दिशा में उदित हुए, गोपियों ने देखा आ एक बहुत सुंदर वही सोने का रथ है जिसमें अक्रूर आया था और हमारे कमल दल नौचर जशोदा नंदन श्याम सुंदर को लेकर मथुरा चला गया, वही रथ है, हम अच्छी तरह से पहचानती हैं। अक्रूर आगत किंबा कंसस्य अर्थ साधक, कंस तो अक्रूर तो कंस का स्वार्थ बनाने के लिए, स्वार्थ की पूर्ति पूरा करने के लिए इस रथ में यहां पर आया था, सोने के रथ में। किंतु अब ये रथ पर कौन आया, वही अक्रूर आया है या कौन आया है? रात में तो देखा नहीं, सवेरे की बात हो रही। ओ दूसरी सखी बोली कि क्या साधक करेगा उसका पंस? हाँ हाँ, कंस अपने पापों से तो मथुरा में मारा गया और उसका श्राद्ध करना है, श्राद्ध में पिंड दिया जाता है और पिंड मथुरा में तो नहीं है, सहज रूप में ही वृंदावन में मिल जाएगा, लाखों लाखों गोप ब्रजवासी और लाखों लाखों गोपियां कृष्ण के विरह में प्राण प्रत्याग उन्होंने कर दिया होगा, इसलिए फिर यही सोच करके आए हैं कि उनके हृदपिंड को ले जाएंगे, हृदय रूपी पिंड को लेकर, और कंस का पिंड देंगे 13वें दिन में, इसीलिए शायद आया होगा। गोपियां कुछ सुन रही हैं, कह रही हैं और उद्धव सुन रहे हैं, सोच रहे हैं जी मैं इस रोत सोने के रथ पर क्यों चढ़ करके आया, किसी को हम सांत्वना देने आए हैं, सोने के रथ पर आने से तो होगा नहीं, मुझे पैदल आना चाहिए था, ब्रज की सीमा में रथ की कोई आवश्यकता नहीं। एक दूसरी बोली, जानती हो कृष्ण ने इसको भेजा है, इस रथ को किस लिए इस रथ को भेजा है, सोने के रथ पर अपने कर्मचारी को भेजा, देखो हमारा कर्मचारी भी एक सोने के रथ पर आ सकता है, और मैं साधारण ग्वारिया नहीं हूं, गौवा चराने वाला नहीं हूं, अब मैं क्या हूं, अब तो मथुरा का राजा हूं, इसलिए हमारा छोटा राज कर्मचारी भी प्यादे पद पे भी अब सोने के रथ में चलते हैं, ये दिखलाने के लिए अपने माता पिता को ये तुम्हारा वो पुत्र नहीं, वो अब तो वसुदेव जी का पुत्र, देवकी का पुत्र है। याद रखो एक चीज को, कृष्ण तो वही है, मथुरा वाले ही, ब्रज में वही कृष्ण है जो ब्रज में थे, अब ये दोनों में अंतर क्या है, ठीक से समझो, मथुरा या द्वारका में वही कृष्ण ही तो हैं जो वृंदावन में थे, थोड़ा सा अंतर आ गया है भावना का, रूप तो वही है, कृष्ण तो दूसरे हो नहीं जाएंगे, किंतु भावना का कुछ रूप अंतर आया है, क्या कृष्ण से पूछेगा तुम्हारे पिता का नाम कौन है, मैया का नाम कौन है, तो क्या बतलाएंगे, अब वो देवकी नंदन बतलाएंगे, बस देव नंदन बतलाएंगे, सिर पर मोर मुकुट होगा कि नहीं, अब वो नहीं, अब वो मोर मुकुट नहीं, गैया चराने की लपटी उनके हाथ में होगी कि नहीं, नहीं होगी, अब मथुरा वासियों के और वहां की रमणियों के प्रियतम है, और पहले क्या थे गोपियों के, इतना अंतर आ गया, मथुरा में और द्वारका में वो मोर मुकुट कभी धारण नहीं कर सकते, ये नहीं बतलाएंगे ये मैं बस उनका नंद बाबा और जसोदा का पुत्र, ये सब नहीं बदलाएंगे। तो इस तरह से स्त्रियों की बात को सुन करके उद्धव जी बोले जी हमने बहुत गलती किया, सोने के रथ पर मैं क्यों आया, लज्जा के मारे ये रथ पृथ्वी फट जाती और मैं उसमें समा जाता तो बल्कि अच्छा था, गोपियां ये ताने मार रही हैं हमसे, तंग भिक्ष कृष्ण अनुचरम ब्रजस्त्रिय प्रलंब बाहु नवकंज लोचरम पीताम्बरम पुष्पर मालिनम लसन मुखार बिंदम मणिमृष्ट कुंडल। गोपियां ने देखा एक सांवला सा व्यक्ति, नवयुवक, श्याम है किंतु श्याम नहीं है, श्याम ये तो है सांवला किंतु वो सांवला श्याम नहीं है, प्रलंब बाहु जैसे कृष्ण लंबी भुजाएं हैं अपने घोड़ों को आती है, ये इनका भी यही है, नवकंज लोचन, कमल के जैसे इसके भी लोचन है, किंतु वो नवकंज लोचन नहीं है, हमारे प्रियतम नहीं है। पीतांबरम, ये भी पीतांबर पहने हुए, कृष्ण ने अपना पहना हुआ कपड़ा दे दिया है, उसमें कृष्ण के अंगों का गंध उस पीतांबर में लगा है, जिसको सुन करके कहते हैं ये कृष्ण ही का है, किंतु ये कृष्ण नहीं है ना? पुष्कर मालिनम, वनमाला, कमलों की वनमाला, कमल फूलों की। लसन मुखार बिंदम मणि मृष्ट कुंडलम, कृष्ण के मणि और मुकुट कृष्ण ने खोल करके उनको लगा दिए हैं। सुच स्मिता को अश्य पी पिच्य दर्शन उतश्च कश्या मायात अच्युत वेशभूषण। अरे ये कौन आया मथुरा से? कृष्ण का ही मणि मुकुट वनमाला सब कुछ ले आया, किंतु वो श्याम श्याम नहीं है, तो ये कौन है? ओहो, अब समझी। ज्ञानीश्वस्वाम उद्धव से बोल रहे, ओह मैं समझ गई, तुम उनका दूत है, कृष्ण तो नहीं है उनका दूत है, अब हम समझ गए। और इतने में ही एक भ्रमर झंकार करता हुआ राधा के जी के चरणों की तरफ में आ रहा है। जानी महे जदुपति पार्श्व, ओ जदुपति कृष्ण, अब तो जदुपति कृष्ण हो गए हैं, उग्रसेन नहीं, नाम मात्र के हैं। पार्श्व समुपागतम, वो यहां पर आए हैं। भर्त्रे प्रेषिता, प्रभो भवान प्रिय चिकित्सा, उन्होंने श्याम ने इस श्याम को वो माता पिता को सांत्वना देने के लिए भेजा है, अन्यथा गोब्रज में गौओं के गायों के भूमि में, गोचारण की भूमि में, यहां महल नहीं है, आराम की वस्तुएं नहीं है, वहां उनके स्मरण की बात ही क्या है? कुछ स्मरण करने लगे बेचारे गोपियां, गायें रहती हैं, बछड़े चरते हैं उस वन में, और तो कृष्ण के लिए स्मरण करने की कोई चीज नहीं, बस माता पिता, सबका संबंध सब भूल जाएगा, किंतु माता पिता का संबंध छोड़ने पर भी वो नहीं टूटता, उसमें रक्त सना हुआ है, स्वगे संबंधी हो, इसलिए इधर नहीं, ये क्यों काल आ रहा है, श्याम आ रहा है, उसको जाना चाहिए नंद के द्वार पर, तो ये इधर आ रहा है। अन्येषु अर्थकृता मैत्री, ओ हम लोग के साथ में इसका जो संबंध था वो मानने से संबंध था, किसका? उस श्याम का मानने से संबंध था, मानो तो मानो संबंध है, नहीं तो नहीं है। बाप और मैया का संबंध पुत्र से, तुम मानो और न मानो, तुम्हारे रक्त रक्त में शरीर ही तुम्हारा उसी माता पिता से बना हुआ है, उसको तुम्हारे छोड़ने से कैसे छूट सकता है, ये तो छूट नहीं सकता। और हम लोगों का मान लो तो संबंध है और नहीं तो नहीं है। हम लोग उद्धव एक बात बतलाओ तो, उनके अनुसार आप हैं साधो, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या? देखो माता पिता का विवाहिता, भाई का, बंधु का, चाचा का, चाची का, ये जो संबंध होता है मुनियों के लिए ये दुष्कर है छोड़ देना, बहुत हम लोग भी जब तक जीवित सन्यासी हैं छोड़ दिए हैं माता पिता को सबको, किंतु छोड़ने से ही हो जाएगा? यह शरीर किसका दिया हुआ? उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए रग रग में वही उन्हीं का है, रक्त और सब कुछ उसी से हमारा पालन पोषण हुआ। एक प्रेम होता है निस्वार्थ, एक प्रेम होता है स्वार्थ। देखो हम बतलाते हैं उद्धव, इसमें हमारा प्रेम निस्वार्थ था और उनका प्रेम भी निस्वार्थ था, वो कैसे छूट गई, वो प्रीति कैसे दूर हो गई। तो एक स्वार्थ निस्वार्थ प्रेम और एक स्वार्थ प्रेम, हम उसको कुछ उदाहरण के साथ में बतला रहे हैं। गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से, जिस प्रकार से तुम मैंने कौन, भ्रमर के लिए जिस प्रकार से फूलों पर जाते हो, फूल चूस लिया उसका रस फिर छोड़ दिया सदा के लिए, जिस प्रकार से एक भ्रमर फूलों पर विचरता है उसका मधु लेता है और एक फूल का मधु लेकर के दूसरे फूल पर उड़ गया, तीसरे पर, फिर उसे कोई संबंध नहीं, ये किसके लिए उस पर जाता है, मधु आहरण करने के लिए, मधु के लिए जाता है, मधु का काम खत्म हो गया छोड़ दिया। ये कैसा प्रेम है, स्वार्थ प्रेम है। निस्सम तजति गणिका अकल्प निपति प्रजा, निशंत जनते गणिका, गणिका मैंने वेश्या, पुरुषों को बालाती है और जब देखती है कि इसके पास में धन नहीं रहा, उसको धन सब ले लिया निचोड़ लिया, क्या करती है, छोड़ देती है, अब दूसरे पुरुष के साथ में प्रेम करती है और उससे पैसे के लोभ से फिर अपना बिजनेस कायम रखती है। उस पुरुष को जबकि वो गरीब हो गया, अब उसे कुछ मिलने का नहीं तो उसे छोड़ देती है। अकल्पम निपति प्रजा, वही राजा किसी कारण से राज्य से च्युत हो गया, उसको लोग क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, प्रजाएं छोड़ देती हैं। इराक के राजा सद्दाम थे, जब तक राजगद्दी पर थे तब तक तो सभी लोग जी हजूर करते थे और जहां उतर गए जेल में चले गए, अब कोई पूछने, अब सभी कहते हैं कि बहुत खराब आदमी था, बहुत दुष्ट आदमी था, प्रजाओं का अपहरण करता था, अधीत विद्या, विद्यार्थी अपने कॉलेज में अपने विद्यालय में जा तब तक रहता है जब तक कि विद्या नहीं लाभ हो जाए, डिग्री पा लिया और उस मास्टर से गुरु से कोई भी अब संबंध नहीं रह जाता, छोड़ पूछता भी नहीं है ये गुरु जी कैसे हैं, आपने हमको 10 वर्ष 20 वर्ष पढ़ाया खत्म हो गया। ये सब स्वार्थ युक्त प्रेम है। रिक्तिजन, कोई आपके घर में पुरोहित का काम कराने आया विवाह शादी करने के लिए, दक्षिणा मिल गई और चलता बना, अब उस घर में ठहरने की कोई जरूरत, दक्षिणा के लिए तो किया था, दक्षिणा मिल गई। खगा, एक पेड़ पर हजारों पक्षी चिड़िया रहती हैं और यदि वो पेड़ सूख गया तो कोई चिड़िया रहेगी, कोई नहीं रहेगी। वन में पशु पक्षी रहते हैं, जानवर रहते हैं, हिरण रहते हैं, और वन में आग लग गई सब कुछ जल गया तो हिरण अब फिर वहां पर आएंगे, क्योंकि फल नहीं मिलेगा, घास नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं आएंगे। ये सब स्वार्थ का। आजकल पश्चात हवा इंडिया में भी बह रही है, इधर तो बह ही रही है, पति देखा जी अब कमा नहीं रहा है तो दूसरा पति कर लो, और पति ने देखा जी अब स्त्री हमारी अब उतनी सुंदरी नहीं है जैसे पहले थी, तब नवेली एक और कर लो, कोई दोष की बात नहीं है, किंतु है ये स्वार्थ। पहले देखो जो कोढ़ी हो गया पति तभी नहीं छोड़ा, राम ने सीता को छोड़ दिया 2-2 बार किंतु सीता ने छोड़ा, सीता ने नहीं छोड़ा। अच्छे बतलाओ, जब सीता जी वाल्मीकि ऋषि में के आश्रम में गई और वहां राम का स्मरण कर रही है, आंखों से आंसू ढल ढल गिर रहे हैं, विरह में तड़प रही है, और देखो राम राज सिंहासन वहां पर रहते हुए भी राजमहल में घास की का बिछौना बना दिया और सो रहे हैं और एक टक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सीता जी का, और वहां से सीता जी देख रहे हैं, कौन दुखी अधिक है, सीता जी है, सीता नहीं राम, क्यों, सीता जी का पालन पोषण के लिए एक नया पिता मिल गया है वाल्मीकि जैसा ऋषि, जो अपने लाड़ ममता से उनको अब पालन पोषण कर रहा है, उनके बच्चों को देखता है, उनमें उनका समय निभ जाता है, कुटिया में सब महर्षियों की पत्नियां हैं, मुनि पत्नियां हैं, वो सीता जी से मिलती हैं और बातें करती हैं, वो भूल जाती हैं, और राम राम को बातचीत करने के लिए कोई है, कोई नहीं, उनको वहीं पर बिच्छू के डंक मारते हैं, जैसे कैकेयी को डंक मारता था ना बिच्छू को, ऐसे उनको मार रहा है, किंतु कोई उपाय नहीं है, मन की बात किसी से कह भी नहीं सकते, ऐसे ये होता है प्रेमी की दशा। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से दग्धम, तो आजकल भी स्त्री और पुरुषों की ऐसे तुम लोगों में हवा ना लगने पाए, बहुत जोर से हवा चल रही है, उस आंधी में तुम लोग भी मत पड़ जाना, जो पति को छोड़ देना और पति स्त्री को छोड़ करके नई शादी कर, अमेरिका में नियम है रेकर्ड, एक बुक होता है ना कौन सा ग्रीनिज बुक, तो उसमें कोई स्त्रियां दिखलानी चाहती है कि हमने कितना पति छोड़ा, अधिक से अधिक नंबर में कितना, 30, 40, 50, और उधर पुरुष भी ग्रीनिज में नाम लिया हमने इतनी पत्नियां बदल दी, वो समझते हैं कि इसमें बड़ी क्या है प्रशंसा है, इसमें बहुत हमारा सुनाम होगा, ग्रीनिज बुक में हमारा नाम आ जाएगा। इति गोप्यो हे गोविंदे गत बात मानस कृष्ण दूते ब्रजम जाते उद्धम तक्त लो, उद्धव बतला सकते हो, हम लोगों का तो प्रेम इस तरह का नहीं था, हमारा प्रेम निस्वार्थ निर्मल था कृष्ण के प्रति, सबको छोड़कर के एकमात्र कृष्ण में ही हमारा मन रमता था, और किसी को जानता ही नहीं था, और कृष्ण का भी प्रेम जब तक ब्रज में थे हमने देखा निस्वार्थ प्रेम था, फिर ये उद्धव ये प्रेम कैसे टूट गया बतलाओ तो, उद्धव सिर पुजलाने लगे, कोई उत्तर ही नहीं आया, नहीं कुछ बोल सके। इति गोप्यो ही गोविंदे गत, गोपियां इस प्रकार से उद्धव से पूछते हैं, जब उत्तर नहीं मिला तो कृष्ण दूते जाते उद्धवे तप्त लौक्य, बड़ी दुखी हो गई, गायंत प्रिय कर्माणि रुदंत गत, लज्जा छोड़ दिया जी किसके सामने हम क्या कर रहे हैं, लज्जा भी एक पराया व्यक्ति के साथ में, जो कृष्ण के हम प्रेम करती थी यह लज्जा भी नहीं रही, लज्जा को छोड़ दिया, लज्जा नहीं छोड़ा नहीं छूट गया, और रो रो करके वही बातें कृष्ण की चर्चा करने लगी, तस्य स्मृत्य संस्मृत्य जान किशोर बल, बालकपन से लेकर के किशोर तक की उनकी जितनी लीला है स्मरण कर रही हैं, क्या स्मरण कर रही हैं, गोवर्धन धारण कृष्ण ने किया है, उस समय में सारे ब्रज के लोग अपने गायों बछड़ों बैलों गाड़ियों के साथ में गिरिराज गोवर्धन के अंदर में जहां से निकाल लिया था उसके अंदर में चले गए सब, गोपियां नहीं आएंगी केवल, आएंगी गोपियां भी आई, वृद्धा भी आई, माताएं भी आई, बहनें भी आई, और ये गोपियां भी आई, आज पहला मौका था जबकि इतनी निकट से गोपियों ने गिरिराज जी को उठाते हुए कृष्ण को देखा, पहला दिन ऐश्वर्य में भी दोनों का मिलन, ये पहली बार था इतने निकट से। आज तो नंद बाबा कोई भी नहीं कहेगा, विश्व भानु बाबा भी कोई भी नहीं कहेगा जैसे पर पुरुष के साथ में ब्रज की क्यों कोई भी, यहाँ तक कि जटिला और कुटिला वो लोग भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी आई करके शरण लिया था उन लोगों ने भी उसी के अंदर। इसलिए पूर्व राग के पश्चात में यही पहला दिन था जिस समय गोपियों का इनसे मिलन हुआ और वो निकट आकर के अपनी भौहों पर गोवर्धन को उठा लिया, यदि गिरे तभी साप से तुम चूर्ण हो जाओ, जल करके भस्म करा, जला कर भस्म करा। काचिन मधुकर्म दृष्ट्वा धायन्ति कृष्ण संगमम प्रियपस्थापितं दूतम कल्पयेदम् इदं मम हृदये। अब ये इतने में गोपियां जो रुदन करती हुई कृष्ण का लीलाओं को स्मरण कर रही है, कभी गोवर्धन में जाती हैं मन बहलाने के लिए, कभी नंदगांव में, कभी यमुना के घाट पर। पनघट जानते हैं, पनघट किसको कहते हैं, जिस पनघट ब्रज में कुएं होते हैं पहले से ही, और सब में अधिकांश में खारी पानी और बोली है गारी। अरे सारे जितने चौबे हैं और सब सब ये खारी बाली बोलते हैं। कृष्ण के सखालो भी कृष्ण को सारे तारे जैसा इच्छा तैसे बोलते हैं। तो और लीलाओं का स्मरण का पनघट, पन किया है घट का, पन किया है मैंने
प्रतिज्ञा किया है
क्या, घट पर मिलेंगी पानी जहां पर भरा जाता है उस कुएं पर हम लोग मिलेंगे, इसलिए पनिहारी कुंड, पनिहारी कूप इत्यादि उसे कहा। कृष्ण ने पन किया है कि पानी भरने के समय में हम मिलूंगा, और इधर गोपियों ने भी और वहीं पर मिलती हैं, इसलिए पन घट, पन पन माने प्रतिज्ञा कर, इसलिए घट पर हम मिलेंगे। उस समय मधुकर को देखा, एक भौरे को देखा, ध्यानती कृष्ण संगमा, कृष्ण का संग देखा, देखा कोई गोपी, कोई विशेष गोपी भीतर में ले गई उद्धव जी को। अब तक तो साधारण गोपियां बात कर रही थी, और उनको भीतर में एक देवी का दर्शन कराने गई, वो कमल के पुष्पों के सेज पर सो रही थी, होश नहीं, जी रही है मर रही इसका ठीक नहीं। रुई का फाल लेकर के यहां लगाया, मालूम पड़ा जी अभी जीवित है। वो ध्यान कर रही है बिना कुमारियों के, कृष्ण अकेले नहीं रह सकते। तो उसने ध्यान किया मधुपुरी में जो जादव पत्नियां हैं उनका, उनके संग में विहार कर रहे हैं, उनके साथ में दिल्लगी इत्यादि कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और देख करके कुछ क्रोधित हो गई, और क्रोधित होकर के ये उस मधुकर को, उस भौरे को ये कहने लगी। क्या कहने लगी, अभी बतलाए एक कीर्तन हो जाए इसी के रूप का। मनोरोला गया गोपियों की क्या अवस्था है देखेंगे। गोपियां कैसे विरह में तड़प रही हैं, सुना घाट सुना ब्रज सब कुछ सुना लगता है।
जय जय श्री राम,
मतलब खूब मधुर रूप से थोड़ा थोड़ा हल्का बजा है।
ओ मनोरोला गेना सखी
सभी लोग गाओ,
श्याम बिना मन जो लागे ना,
बांग्ला कोई कीर्तन करो कोई बांग्ला
फुलक शरीरा
के समाप्त हुए। सब लोग तुलसी पत्र हो पत्र पुष्प मियाँ से भागवत के प्रणाम करे, प्रदक्षिणा करे, काल कथा समाप्त।
टुमोरो इज द फाइनल डे ऑफ सिक्स डे हरि कथा। प्लीज ब्रिंग फ्लावर्स एंड तुलसी लीव्स एंड वी विल वर्शिप
श्रीमद् भागवतम
एंड देन टेक द कलश एंड डू द परिक्रमा एंड then end the six-day katha.
Srimad Bhagavat will be given to return back to the place where from where we brought.
Srimad Bhagavatam will return back to the place where it came from.
पहले हमने वेणुगत सुनाया थोड़ा सा हल्का सा, और थोड़े में ही गोपीगुत को भी सुनाया। अब एज ए एसेंस बहुत शॉर्ट रूप में भ्रमर गीत के भी दो एक श्लोकों की व्याख्या करूं, और तब फिर उद्धव के मुख से गोपियों की महिमा और कृष्ण के मुख से गोपियों की महिमा सुनेंगे, और तब इस चीज को हम लोग श्रीमद् भागवत को अपना समापन करेंगे। ये अनुष्ठान 6 दिन का। इस 6 दिन में हमने ऐसी कथाएं इनमें से निकाल ली है जो साधारण रूप में साधारण वक्ता लोग इन विषयों को स्पर्श नहीं करते, संभव नहीं है। प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र और कुछ इधर उधर अम्बरीश चरित्र, ये सब चीजों को कह करके बस भागवत सप्ताह का विराम ले लेते हैं। तो हम अभी 6-7 वर्षों से प्रति बार भागवत कहते हैं, नई नई प्रकार से उसी में से ही लेकर के करते हैं, उसमें का ही सार लेकर के करते हैं। तो इस बार हम नए रूप में हम भ्रमर गीत का कर। भ्रमर गीत इसलिए नाम पड़ा, राधा जी मूर्छित होकर देख रही हैं, बोल चाल रही हैं, किंतु समाधि में हैं, उनकी सहज समाधि है गोपी। और एक भौरे को कृष्ण का दूत मानकर उस पर कभी बिगड़ रही हैं, कभी उसे खरी खोटी बातें सुनाती हैं, कभी दुलार से कुछ बोलती हैं, कभी उससे कुछ पूछती हैं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत के 47 अध्याय के 12-21 कितना हुआ, 10 श्लोकों में जल्प प्रजल्प सुजल्प अनुजल्प अभिजल्प सब इसमें जितने प्रकार के जल्प हैं दिव्य उन्माद में, ये दिव्य उन्माद है राधिका। साधारण स्थिति में नहीं बोल रही, दिव्य उन्माद कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते। यदि थोड़ी सी भक्ति स्वामी सिंधु उज्ज्वल इन मणि कवि पाठ करे, गुरु वैष्णव के मुख से कुछ सुने, तब तो फिर थोड़ा सा थोड़ी सी वो समझ सकता है। मैं तो साधारण लोगों के समझ के भी बाहर है। क्या रामचरितमानस राम की लीला बड़ी सहज सरल है, बोधगम्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम के लीलाओं को लोग सहजी से समझ सकते, किंतु कृष्ण की लीला बड़ी दुरूह है। एक बार आंखों से पानी आया वो फिर सूखेगा नहीं, ऐसी कृष्ण की लीलाएं हैं। मधो कितव बंधो मास पिशांद्री सपत्ना कुछ बलित माला कुंकुम भक्त मधुपति तन मानिनी नांग प्रसादम यदुसदस विडम्बम जस दूत। वो मधुकर आया और राधा जी के चरण कमलों को ही कमल समझकर उसका मधुपान करने के लिए उस पर बैठना चाहा। राधा जी क्रोधित हो गई, ये काला है ना, ये काले का कोई दूत जरूर होगा, नहीं तो यहां आने से मतलब क्या। अरे कित मधु मधु माने मधुपान करने वाले, तुम मद्यपान करके आया है कि तो बंधु छलिया का तुम बंधु है, तुम इतना छली कपटी धूर्त चोर है, कृष्ण को भी ठग सकता है, मांस पिशांगरी हमारे चरण कमलों को मत छू, छू मत छू, दूर हटो भगो। तो वो भन भन करता हुआ मर्रा रहा है वहीं पर। ओ तू क्या कह रहा है, मैं कैसे खितब का बंधु हूं? खितब माने होता है ठग धूर्त कपट, मैं कपट का बंधु हूं स्वामिनी जी? मैं मदिरा तो पान नहीं किया, झूठ मत बोल। अभी तू वही मधुपुरी से आ रहा है, मधुपुर में एक बहुत मद्यपान को बेचने वाला वहां है, वितरण करने वाला, बिना पैसा ही वितरण करता है, और वहीं पर रह करके तुमने मधुपान किया और तब वहां से उनका दूध पन करके हमें मनाने के लिए तू यहां आया है, मत चो दूर हटो। कुछ और बिल्ली तुम्हारे स्वामिनी जी ऐसा मत कहे, ये तो हमारा स्वाभाविक रूप में ये गोफों हैं, ये किसी का कुमकुम नहीं है। राधा जी ने कहा ओ किसी के कुछ कम कुमकुम को लेकर के, वस्त्राक्षर का कुमकुम लेकर के कहां के जादव पत्नियों के, और वहां से तुम आया है जादव कुमारियों के, अभी हट यहां से भगो। कहे स्वामी जी ऐसा मत कहें, न तो मैंने मदिरा पान किया, न किसी का कुमकुम और न तो कुछ रंग लगा है, ये तो स्वाभाविक रूप में हमारे गुल्फे हैं गोफ हैं, और ये वैसे स्वाभाविक रंग से पीले हैं, और पीले किस लिए हो गए हैं, अधिक से अधिक ये हो तो स्वाभाविक तो ही है, फूलों पर बैठते हैं हम लोग ना पान करते हैं तो उसे हो गया होगा, किंतु जैसे आप कल्पना कर रही हैं वैसा। अरे रहने दो झूठ मत बो, हम सब समझती हैं तुम्हारे अंदर और बाहर की बात, और तुम्हारे प्रभु की भी स्वामी स्वामी जो हैं काले उनके भी। बहुत मधुपति तन्माननी नंक्षा, देखो क्या इसी से हमारा मान दूर करने के लिए आए हो अपने गुल्फों पर, ओ कुमकुम लगा करके आए हो हमारा मान भंग कर और मधु पान करके पागल हो करके, जैसे आदमी पागल हो जाता है ना मद्यपान करके, क्या कहते हैं उसको, हाँ डंकर क्या हो जाता है, पागल ही हो जाता है, बुद्धि तुद्धि तो रहती नहीं है। तो तुम आया है ओ जदू लोग, जो जदू सभा में बैठे हैं वो जब देखेंगे कृष्ण के कुमकुम को तो वो क्या करेंगे, बदला ले लेंगे, जान जाएंगे तुम व्यभिचारी है, तुम्हारे स्वामी व्यभिचारी, जिसका दुख ऐसा लंपट है ठग है धूर्त है, तो उसके प्रभु कैसे होंगे, वो भी तो वैसे ही रंग बिरंगे होंगे, इसलिए हमारे पैरों को मत छो यहां से भग जा जल्दी दूर हट जा। सखित धर सुधा स्वांग मोहिनी पाई, ओ स्वामिनी जी झंकार कर रहा है वो, भागा तो नहीं, प्रसाहट करके वो करता हुआ फिर वो दही पैरों पर आने लगा। अरे तू हमारे पैरों पर गिरता है हमें मनाने के लिए, अपने प्रभु जी से हमारे ये सीख करके आए, ये मानिनी को कैसे मनाया जाता है ये तुम सीख करके आए। देखो भागवत कितना रसीला ग्रंथ है, क्या कोई कभी ऐसी कल्पना कर सकता है? मुश्किल है, ऐसी कल्पना का था पाना बड़ा मुश्किल। सागर ने तो रामचंद्र जी का चरित्र लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, थोड़ा सा सागर जी लिख से हटकर वाल्मीकि का पूरा ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो लोक रंजन उसे नहीं होता। वाल्मीकि जी का जो चरित्र राम का लिखा है इतना सरल स्वाभाविक रूप में एक मनुष्य के रूप में, राम का कभी कभी पता लग जाता है कि ये भगवान है, कि वाल्मीकि ने उनको भगवान मानने ही नहीं दिया। लोक चरित्र ऐसा सुंदर सर सजीव है, क्या किया चित्रा किया बहुत ऐसे। ये व्यास जी ने सुखदेव को और सुखदेव के मुख से ये श्रीमद् भागवत, जैसे वाल्मीकि तो ऐसे ही हृदय को द्रवित करने वाली है और उसमें लवकुश नामक कुमारों के मुख से सुरेले तान से सुंदर मुख से राजकुमारों के मुख से गाई जाने वाले पर हृदय को तुरंत द्रवित कर देती है। ऐसे ही व्यास जी ने अपने आप नहीं कहा, वाल्मीकि जी ने अपने बेटों को पढ़ाया और उन लोगों ने ये उसका गायन किया। और ये गायन कौन कर रहा? व्यास जी स्वयं भगवान होकर के भी नहीं कर रहे, अपने बेटे सुखदेव जी से गायन करा रहे। तब तो इतनी मधुर, सुख पक्षी बहुत मधुर गाता है और पक्षी लोग मनुष्य का स्वर उच्चारण नहीं कर सकते, सुख कर सकता है, बहुत मधुर बोली। तो वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, जो गोपियां कह रहे हैं, सकित अधर सुधांग स्वांग मोहिनी पाय, सकित अधर सुधांग स्वांग मोहिनी पायित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्तजेस्मान भवाद्री परिचरति कथम तत्पद्म पद्मं तु पद्मा ह्यपेवत चेता उत्तम श्लोक जल्पै। गोपियां कह रही, अरे तुम्हारे स्वामी स्वामी का गुण सुनना चाहता है, सुना दे हम। अभी कल का तू नया नवीन अर्वाचीन व्यक्ति, तू क्या जाने उनके संबंध में? उद्धव को पता है कृष्ण का चरित्र जो ब्रज में किया? नहीं पता। तो वो कह रहे हैं तुमको कुछ पता नहीं है, भ्रमर तुम नया आया, ए उद्धव तुम नया आया है, तुम क्या जानो उनके चरित्र को? बचपन से पुतना को कैसे मारा और जो गोपनीय लीलाएं हैं, रास इत्यादि की लीलाएं हैं, कदम्ब वृक्ष के ऊपर में उठ गए उनके वस्त्रों को लेकर के, ये लीलाएं उद्धव को मालूम है? ये सब लीलाएं मालूम, ये तो गोपियां ही जानती हैं। कृष्ण कहते हैं पनघट पर नहीं, गोवर्धन में दान घाटी पर अपने सखाओं के साथ में मार्ग रोक लिया, दान देकर के जाना पड़ेगा, टोल टैक्स। अभी हम लोग आते हैं तो उनको आते जाते समय टोल टैक्स चुकाना पड़ता है, जो कार से जाएगा ट्रक से जाएगा और सबको। नई पद्धति में भी ये देखते हैं, बिना इसके उनका चलता नहीं है, तो ये टैक्स लगाया है। तो वहां पहले से ही टैक्स की रीति है, जो दान घाटी पार करके आएगा खाली आदमी पर नहीं, जो दधि दुग्ध और कोई चीज बिजनेस के दर से ले आएगा उसको रोकेंगे। तो गोपियां दान घाटी पर ला रही हैं और कृष्ण मग्न रूप में उसमें, परस्पर परस्पर होता है दान किसका? ललिता जी डपट करके पूछती हैं दान किसका? तो वृंदावन मेरा है, तुम्हारे कौन के पुष्ट से, तुम्हारे बाबा का संपत्ति है, बाबा ने खरीद लिया वृंदावन को, या तुम्हारे मैया को जौतुक में मिला, यह कहां से वृंदावन तुमको मिला? देखो अधिक ठिठाई बात मत करो, कृष्ण कहते हैं। अरे तुम लोग जानती है ना जो बिंदा मेरी पत्नी है, और पत्नी का जो कुछ है वो पति का है, मैं इसका पति हूं, इसलिए वृंदावन बिंदा का है, और उसका यह धन संपत्ति यह मेरा हो गया। गोपियां ताली बजा करके हंसने, झूठा लबा ढोर झूठ बोल रहा है। बिंदा को बुलाया जाए, बिंदा को बुलाया गया, पूछा जे तुम इनकी पत्नी हो, कब शादी हुई? तो इसे इसके साथ में हमारा कोई भी संपर्क नहीं है, ये काला से। ये तो समझता है कि ब्रज की जितनी कुमारियां लड़कियां हैं हमारी सब पत्नी हैं, और कोई भी इससे शादी नहीं करना चाहता, और ये चाहता कि सभी हमारी पत्नी हो, हमारा विवाह इसके साथ में कभी नहीं हुआ। ये तो वन हमारा है, हमने राधिका जी को वृंदावनेश्वरी का राज्य, वृंदावन का राज्य उनके चरणों में मैंने दे दिया, इसलिए वृंदावनेश्वरी राधिका। खज्जा सा भी हो हम यहाँ टैक्स दे करके ही जाना पड़ेगा, तुम लोग हमें धूर्त चोर निष्ठुर इत्यादि कह रहे हो। मेरा जैसा परमात्मा, मेरा जैसा धर्मात्मा कौन है, और उसको तुम लोग ऐसा कलंक लगा रहे हैं? हाँ तो हम तो जानती हैं कि आप परम धर्मात्मा हैं। बचपन में एक स्त्री को मारा, अभी 6 दिन की उम्र केवल, तो अभी एक स्त्री को मारा जो मायक माँ का वेश बना करके, और गोपियों के पेड़ों पर चढ़ गया, उनको उलंग छोड़ करके पानी में। ये परम धर्मात्मा का ही तो कार्य है ना, ये परम धर्मात्मा का कार्य, और दूसरों के स्त्रियों को लेकर के राज करना ये तो और परम धर्म का काम है। अच्छा ये बतलाओ, वृंदावन जो है तुम्हारा है, एक पेड़ लगाया, एक लता लगाया, उसमें पानी सींचा, देखा कि कृष्ण के पास कोई उत्तर नहीं, कृष्ण को भी हरा रही है बागवाणी से, विलास से। तो ये सब उद्धव जी को पता है, ये जो लीलाएं हुई उद्धव जी को कुछ पता है, करोड़ों लीलाओं में से एक तनिक भी लीला नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा था जो उद्धव जाओ ब्रज में मैं हूं, मथुरा में तो मैं एक टुकड़ा अपने हृदय से हूं, बस थोड़ा सा हूं। सकृत अधर सुधां पाई स्वांग मोहिनी पाए, गोपिया करे जानते हो भ्रमर, तुम्हारे प्रभु की बातें बतलाए, सकित अधर सुधन पाई, जबरदस्ती जान सुन करके अपने अधर सुधा का पान हमें हमसे कराया, किस लिए? भूल जाए सब कुछ, लोक लज्जा धर्म सब भूल जाए, उसकी हो जाए, इसलिए अधर सुधा स्वान मोहिनी पायित्व, पीकर नहीं, ये नहीं कहा जो पीकर, पान कराकर सुमन सैव, जैसे सुमन होता है, सुमन किसको कहते हैं? पुष्प को सुमन कहते हैं, और एक मन कहते हैं सुमन अच्छा मन। गोपियां करें कि हमारा मन तो कैसा है? सुमन, और उसका मन कैसा है? सुमन। देखो कैसी कला के साथ में लिख रहे हैं, कलाएं हैं इसमें, सुमन सही। जैसे एक भ्रमर फूलों को, सुंदर फूलों को छोड़कर एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ जाता है, ऐसे तुम्हारे प्रभु एक बार हमारे हमें अधर सुधा का पान करा करके हमें अंधी प्रेम में मतवाली कर दिया, और हम अपने आप को भूल गई, और वो एक फूल से दूसरे फूल पकड़ करके आज ब्रज को छोड़ करके कहाँ गया? मथुरा में चला गया। परिचरति कथम तत्पाद पत्पम। देखो स्वामी जी, हमारे प्रभु की निंदा मत करो। देखो परम पतिव्रता नारी लक्ष्मी जी उनके चरणों को पलटती हैं। परिचरत कथम, क्यों अपने पति को छोड़ करके उनका चरण पलटने के लिए आना चाहती है, किंतु यह सौभाग्य नहीं हुआ आज तक। चाहती तो हैं किंतु ये सौभाग्य नहीं, इसलिए उनको आप इतना चोर ठग और क्या क्या ना जाने कह रही हैं। ओ इसकी बातें उत्तम श्लोक जलपाई, ऐसी मीठी मीठी मधुर बातें करता है कि कौन ऐसा इस विश्व है जो उसकी बातों में ठग भरी बातों में न भूल जाए। अभी गया है मथुरा न, मथुरा के समस्त रमणियों को अपने बाग जाल में विमोहित कर देगा। यहां था तो वैसे ही, लक्ष्मी जी तो नवीन है, जानती तो है नहीं कृष्ण के संबंध में, काले के संबंध में, इसलिए समझ नहीं पाती कि महो बहुषण गायस्तम जदुनाम अधिपति अग्रियाणाम अग्रतो न पुराण। अरे भ्रमर कि महो बहुषण गायस्तम, अरे तो क्या पुनः पुनः उन्हीं की बातें, उसी काले की बातें, ठग की बातें, धूर्त की बातें कह रहे हो, हमें मत सुनाओ, हम जानती हैं बहुत पुरानी बात है, उनको आज नई बात नहीं है। जदु नाम अधिपति अग्रहण, उस जदुपति कौन हो गया इस समय, वही जदुपति ठग धूर्त, उसी के लिए तो हम लोग आज रास्ते के फकीर हो गई हैं, घर बार स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ छोड़ करके आज उसके लिए दर दर के हम भिखारी बन रही हैं। उस पुराने बात को छोड़ो, विजय सख सखी ना, विजय सख अर्जुन के जो बंधु हैं वो कृष्ण, उनकी जो सखियां हैं जदुपति की कुमारियां या रानियां, उनके सामने जाओ कुछ उनकी महिमा का गान करो, और कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उनको उनकी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए उनकी अभिलाषा पूर्ण से तुम जो मांगोगे वही दे देगी। आया समझ में क्या कर रहे हैं गोपियां कह रही, हम तो भिखारिणी है कुछ दे नहीं सकती, हम तो पद के भिखारी, और वो कृष्ण एक का मान दूर करते हैं, फिर दूसरी मान होती है, तीसरी चौथी, तो जिनका मन कृष्ण प्रसन्न कर देते हैं, अब वो तुम्हें जो कुछ मांगोगे वो सभी कुछ दे सकती हैं, इसलिए जाओ वहां वहां गान करो, यहां गान करने की जरूरत नहीं है। दीर्घ चर साया का स्त्री तुरापा कपट रुचि भुजे मृष जासु चरण रज उपास्ते जस्य भूतिर भयंका अपि तक कृपण पक्षे उत्तम श्लोक जल्प। दीर्घ स्वर्ग में, इस भूमि में, पाताल में ऐसी कौन सी स्त्री है जो कृष्ण की बंसी पर और उनके सुंदर रूप पर मुग्ध न हो जाए और उनकी झूठी बातों पर विश्वास न कर ले, ऐसा कोई नहीं है। चरण रज उपासती, अरे जिसकी लक्ष्मी जी चरण रज की उपासना करती हैं, हम फिर ग्वालिने गोबर को पाथने वाली हम गोपियां कौन है? तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं है जो उसके बातों में भूल न जाए। विसर शिरसिपाद, हमारे पैरों को छोड़, झूठ मोट की बात मत कर, विसर शिरसिपाद। गोपियां कह रही, गोपी कह रही है, राधिका जी कह रही है, छोड़ो ओ तुम चातुकारी, ये बातें मान भंजन करने के लिए कृष्ण ने सिखलाया, उसे सीख करके आई, अरे उन्हीं के लिए तो हम सब कुछ छोड़ दिया घर पर, और उन्हीं के बाद अब संधि नहीं होगी, संधि के बाद छोड़ो। इस प्रकार से तरह तरह से कभी ताने मारती हैं, कभी क्रोधित होती हैं, कभी बिगड़ती हैं, कभी हाहुताश कर